परमहंस परिकाचार अष्टोत्तरष्टे डिवाइन गेस ए श्री भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की इस्कान फाउंडाचार्य से धरोहर जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज की जय ओम विश्वपाद परमहंस परिकाचार अष्टोत्तरष्टे डिवाइन गेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती को स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज की अनंत कोटि वैष्णविन की नामाचार सिद्धार्थ ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सद गौर भक्तबिंद की श्री श्री गौनिताय की श्री श्री राधा राधिकरमन भगवान की श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की श्री जगन्नाथ बलदेश्वर दामिया की श्री श्री प्रभुपाद बुक्स मैराथन की श्री श्री भगवद गीता मैराथन की श्री मोक्षदा एकादशी व्रत महोत्सव की इस्कान पंजाबी बाग भक्तवृंद की ताई गौर प्रेमानंद आल गुरु समल डिवोटीज आल गुरु समल डिवोटीज आल गुरु समल डिवोटीज आल गुरु श्री गुरु एंड गौरांग ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज मोक्षदा एकादशी है और कल आप लोगों ने बहुत सुंदर यहाँ पे भगवद गीता यज्ञ का अनुष्ठान किया था, तो आप लोग सब आए थे, बहुत अच्छा। तो आज हम श्री प्रभुपाद जी की लीलाओं का गुणगान करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्री प्रभुपाद जी लीलामृत प्रकरण 52 इस अध्याय का नाम है मैंने अपने हिस्से का कार्य पूरा कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने तो कर दिया है, अब आगे किसको करना है? हम सबको करना है। प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ कर दिया है। जब तमाल कृष्ण गोस्वामी को हंसदूत स्वामी का श्रीलंका से विशेष स्फूर्ति भरा पत्र मिला तो उन्होंने बड़े तड़के उसे श्री प्रभुपाद जी के पास ले जाने का निर्णय लिया। प्रभुपाद ने अभी अभी स्नान किया था, अभी 9:30 बजे के दर्शन के लिए मंदिर जाने के पहले ऊपर छज्जे पर बैठे थे। वे कृष्ण बलराम अर्चा बिरगह की एक तुलसी की माला पहने थे और साथ ही ताजे फूलों की भी एक माला पहने थे। वे एक गोल मसनद की टेक लेकर लेटे थे और पत्र सुनने लगे। हंसदूत के पत्र में एक वाद विवाद का समाचार था जो कोलंबो के एक विख्यात अनिश्चरवादी डॉक्टर कोचोर और हंसदूत के बीच चल रहा था। ज्यों ही तमाल कृष्ण ने पत्र पढ़ना आरंभ किया, प्रभुपाद जी ने डॉक्टर कोचूर का विचार जानना चाहा। तब कमाल कृष्ण एक समाचार कतरन से पढ़ने लगे जो पद के साथ संलग्न थे। क्या सुनिए आप ध्यान से। तमाल कृष्ण ने कहा कि दास और स्वामी ने पूछा कि क्या वैज्ञानिक किसी प्लास्टिक के अंडे से मुर्गी का चूजा पैदा कर सकते हैं। मुझे मालूम नहीं कि उन्हें ज्ञात है अथवा नहीं कि वैज्ञानिकों ने फर्मियम, प्लूटोनियम, इंटीनियम जैसे 10 से अधिक मूल तत्व बनाए हैं। प्रभुपाद जी बिन बोझ पढ़े, धूर्त तुम केवल निसार शोर मचा रहे हो, मुर्गी का बच्चा कहाँ है। धूर्तो, मुर्गी और मुर्गी का बच्चा वैज्ञानिकों से अच्छे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मुर्गी और मुर्गी का बच्चा वैज्ञानिकों से अच्छे हैं। उसने एक सप्ताह के अंदर दूसरा अंडा पैदा किया है। दूसरी तुम्हारी कीमत क्या है, हम तुम्हें कोई महत्व नहीं देते, तुम मुर्गी के बच्चे से कम महत्वपूर्ण हो। वास्तव में प्रभुपाद जी ने वैज्ञानिकों को हमेशा समझाया है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इस धरती पर लोगों को ज्यादातर क्या किया है, गुमराह किया है। आप लोग कहेंगे कैसे, तो समझना चाहेंगे कैसे, समझना चाहेंगे कैसे। देखिए श्री प्रभुपाद जी ने एक बार बताया कि जो पानी है, वैज्ञानिकों का सिद्धांत है, वैज्ञानिकों ने ये समझाया है कि पानी का जो बहाव होता है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। तब प्रभुपाद जी ने कहा ऐसा है, लेकिन ऐसा भी है कि हमारे भगवान जो हैं वो पानी नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा, वैज्ञानिकों को प्रभुपाद जी ने समझाया, प्रभुपाद जी ने कहा आप लोगों ने नारियल का पेड़ देखा है, नारियल जिसे दाब बोलते हैं, हम पीते हैं ना सुबह सुबह, तो नारियल का जो वृक्ष होता है बहुत लंबा होता है, और ज्यादातर समुद्र, जहां समुद्र होता है उसके आसपास ही नारियल का पानी होता है। समुद्र का पानी हम सब जानते हैं क्या होता है, खारा होता है, और नारियल का जो वृक्ष है वहीं पे रहता है, कितना लंबा होता है। तो प्रभुपाद जी ने समझाया कि हमारे जो भगवान हैं, परम भगवान श्री कृष्ण, नीचे से पानी इतने दूर तक पहुंचाते हैं। जो पानी हम पीते हैं नारियल का, वो जाता नीचे से ही है, ये आप जान लीजिए। पानी हमेशा कहाँ जाता है, नीचे से, वो जो जड़े होती ना वो पानी। क्या सिस्टम प्रभुपाद जी ने, आप खुद सोचिए, पानी खारा होता है लेकिन नारियल का पानी कितना अच्छा फ्लेवर युक्त होता है, कितना टेस्टी होता है। और प्रभु कहते भगवान इतने ऊपर पहुंचा देते हैं, और तुम वैज्ञानिकों को इतनी ऊंचाई पर पानी पहुंचाने के लिए टुलू पंप का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे जो लोग अपार्टमेंट रहते हैं 10-10 मंजिल पे, तो मोटर चलानी पड़ती, नहीं चलानी पड़ती, लेकिन भगवान इतनी ऊंचाई पे बिना टुलू पंप के, बिना बिजली के पानी चढ़ाते हैं। यही भगवान की महानता है। मुकम क्रोति वाचालम पंगम लंघेत, भगवान की कृपा अगर हो जाए तो एक मूक गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है, है ना, और लंगड़ा व्यक्ति क्या करता है, पहाड़ को क्रॉस कर देता है। ये किसकी कृपा से, भगवान की कृपा से। ये जितने ग्रह नक्षत्र आप देख रहे हैं सब सिस्टम से चल रहे हैं, तो किसके डायरेक्शन में, ये भगवान का बना हुआ सिस्टम है। इसीलिए प्रभुपाद जी वैज्ञानिकों कहते हैं मुर्गी के बच्चे से तुम लोग कम महत्वपूर्ण, क्योंकि हमेशा जो सच है उसको वो लोग छिपाते हैं। जैसे आप सब लोग पानी पीते हो नहीं पीते हो, बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते, एक दिन दो दिन तीसरे दिन तो नहीं जी सकते। जब निर्जला एकादशी आती है तो कितने लोग कर पाते हैं, जब निर्जला एकादशी करते हैं उनको पता है बिना जल के कितनी तकलीफ होती है, राइट, वो इंतजार करते हैं कितनी जल्दी सुबह आए और हम पानी पिए, ऐसा होता है। तो अब देखिए पानी एक बहुत जरूरी वस्तु है। अब पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं, सबको क्या चाहिए, जल चाहिए। अब जल को वास्तव में भगवान ने बनाया है, लेकिन वैज्ञानिक लोग क्या गुमराह करते हैं कि मुझे पानी का फार्मूला मालूम है। पानी का क्या फार्मूला है कौन बताएगा? H2O, हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सीजन का एक भाग मिलाकर क्या बनता है, पानी बनता है। तुम्हें प्रभुपाद जी ने कहा कि तुम वैज्ञानिकों को जिस दिन, वैज्ञानिकों ने जिस दिन पानी के फार्मूला का खोज किया, पानी तो उस दिन से उस तारीख से पहले मौजूद था। तो हु इज दैट साइंटिस्ट, वह वैज्ञानिक कौन है? पानी तो पहले से मौजूद था, क्योंकि वैज्ञानिक जब किसी चीज का खोज करता है तो कोई डेट तिथि होती है कि इस दिन हमने क्या किया, पता लगाया, लेकिन उसके पहले से पानी है, वो किसने बनाया? तब वैज्ञानिक ने कहा दैट इज गॉड, वो तो भगवान है। तो प्रभुपाद ने कहा यस आई नो द नेम ऑफ गॉड आल्सो, दैट इज कृष्णा। तो जल देने वाले कौन है? कृष्ण है। वैज्ञानिकों से पता लगाने से पहले बड़े बड़े समुद्र, झील, झरने, नदियां जमीन में खोदो तो पानी निकलता है। एक किसका बनाया हुआ? कृष्ण का, भगवान का बनाया हुआ। तो आज से आप लोग जान लीजिए कि वैज्ञानिक किसी चीज का पता लगाता है तो वो क्या बोलता है कौन बताएगा? वैज्ञानिक जब किसी चीज का पता लगाता है तो क्या बोलता है? रिसर्च। क्या बोलता है? रिसर्च। हमने रिसर्च कर दिया। रिसर्च का क्या अर्थ होता है हिंदी में? खोज करना। अरे भाई, एक होता है सर्च, एक होता है रिसर्च। सर्च का होता है खोजना, रिसर्च को रहा दोबारा खोजना। अब आप बताइए कि सर्च, प्रभुपाद जी का कि सर्चर इज ग्रेटर देन रिसर्चर। जो व्यक्ति पहले खोज करके हमको दिया हुआ है वो रिसर्चर से क्या होता है? ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर्चर कौन हो गए? कृष्ण। और रिसर्चर को हो गए? वैज्ञानिक। कितना बड़ा अंतर है, लेकिन वैज्ञानिक कभी भी ये बात समझाएंगे नहीं, गुमराह करते हैं। अब अच्छी तरह क्लियर हो गया ना? क्योंकि आप लोगों को गीता का प्रचार करना है, प्रचारक को ये सब क्लियर होना चाहिए कि आप जितने क्लियर रहेंगे उतने समझाने में क्या होता है, आसानी रहता है। तो सर्चर इज ग्रेटर देन रिसर्चर। वैज्ञानिक हमेशा कोई चीज का खोज करता है तो क्या बोलता है? रिसर्च। जैसे एक और वैज्ञानिक था, उसका नाम आप लोग खुद बताना। वो एप्पल के पेड़ के पास बैठा हुआ था। किसका? एप्पल, सेब का पेड़ के पास बैठा हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, एक एप्पल गिरा। कहां गिरा? गिरा नीचे गिरा। तब वो जो है अवाग रह गया कि एप्पल गिरा तो नीचे ही क्यों गिरा, क्योंकि इसकी बुद्धि वैज्ञानिक बुद्धि थी। उसने खोज किया कि क्यों गिरा। तब उसने किस चीज का खोज किया? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है ना, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अब देखिए यहां पे हम क्या समझना चाहते हैं कि ऐसा नहीं था कि एप्पल पहली बार ही नीचे गिरा था, इसके पहले भी एप्पल नीचे ही गिरता था, ऊपर नहीं जाता था। कटहल, आम, महुआ है ना, शुरू से ही नीचे ही गिरता था, राइट। आम जब पकता है तो ऊपर जाता है, नीचे ही टपकता है। इसका मतलब क्या है कि ये सिद्धांत पहले से भगवान ने लागू किया था, लेकिन जब इंसान को पता चला तो क्या कर दिया कि हमने खोज किया कि पृथ्वी में क्या है, गुरुत्वाकर्षण है, जबकि पहले से खोजा जा चुका है। क्योंकि सिस्टम किसने बनाया है? भगवान ने। तो देखिए जिसने रिसर्च किया उसका नोबेल प्राइज दे दिया है ना, उसका कितना नाम। और जिसने पहले सब सिस्टम बना दिया उसका नाम लेना ही नहीं चाहते, लानत है सब वैज्ञानिकों को। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मुर्गी का बच्चा इन वैज्ञानिकों से अच्छा है। कितना गुमराह करते हैं प्रभु। इससे भक्तों को कभी भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि वास्तव में सब किसके हैं। अब आप सोचिए, आज वैज्ञानिक लोग हवाई जहाज बनाए हैं उड़ने वाला, लेकिन सबसे बड़े वैज्ञानिक विश्वकर्मा जी, उन्होंने क्या बनाया? पुष्प विमान। क्या बनाया था? ऐसा विमान जो कि मन की गति से, माने स्पीड इतनी और इशारे पर, मन के इशारे पर, जैसे भगवान ने कहा, जानते हैं ये दृश्य तब आता है कि जब रावण मारा गया, विभीषण राजा बना दिए गए और सीता जी वापस आ गए। अब सबको कहाँ जाना था? अयोध्या। तब विभीषण ने कहा कि आप आए तो पैदल थे, लेकिन अब कैसे जाएंगे? विमान से जाएंगे। तब पुष्पक विमान को बुलाया गया। वो कोई ड्राइवर नहीं, कोई पायलट नहीं था, कैप्टन को चला रहा है। इशारा क्या कि पुष्पा आ जाए, अपने आप आ जाए, ऑटोमेटिक सिस्टम। कोई इसको ड्राइव नहीं करता, कोई चलाता नहीं। पुष्पक विमान आके लैंड हो गया, सब बैठने लगे, सब तैयार हो गए जाने के लिए। कौन नहीं जाएगा, बेचारे पैदल चले थे, अब सब जो है हवाई जहाज से चले गए। पुष्पक विमान एक ऐसा विमान विश्वकर्मा जी ने बनाया था कि उसमें सारे खाने पीने की सारी व्यवस्था थी, और उसमें डिजायट्री का सिस्टम था कि आप जो इच्छा करेंगे वही मिलेगा, आप सुन। और ऐसी सीटिंग व्यवस्था थी कि जितने लोग आते जाएंगे वो फैलता जाएगा, जगह बनती जाएगी। आपके यहाँ ऐसा नहीं है, जितना फिक्स्ड है प्लेन के अंदर उतने ही आदमी को बैठाएंगे, और आप पैर भी नहीं खींच सकते, इतना सकेस्ट, इतना कंजेस्टेड सीट होती है कि ठीक से आप बैठ भी नहीं सकते। किस पैसे बनाने के लालच में कि दो तीन सीट और बढ़ जाएगी अगर ऐसा कर, आप समझ। लेकिन वहां से नहीं था, आप खुल्लम खुला आराम से सब बैठे, पूरा नजारा देखिए, दृश्य ऐसे। जब बंदर लोग बैठे हनुमान जी से, सब ऐसे देख रहे थे जब चल रहा था, है ना, बड़ा अच्छा लग रहा था दृश्य, बड़ा अच्छा। भगवान ने कहा अयोध्या चलो, वो चल दिया, कोई जीपीएस सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, अपने आप चल रहा है सब। एक टेक्नोलॉजी पहले से ही थी। भागवतम में बताया गया है कि जितने बड़े बड़े देवता थे सबका अपना अपना विमान था। भागवतम पढ़े ना, बताया सब अपने अपने विमान से चलते थे। और आपको पता है शतयुग में जो बड़े बड़े पर्वत थे वो भी उड़ते थे, पता है आपको? जो पर्वत थे, बड़े बड़े पर्वत, एक सबके पंख होते थे और ये उड़ते थे। और इस तरह से अब आप सोचिए कि जब पर्वत बड़े बड़े विशाल पर्वत आकाश में उड़े तो धरती के लोग जो थे डर जाते थे कि भैया गिर न पड़े, डरेगा, डर लगेगा, नहीं लगेगा, डर लग रहा। तो इसीलिए क्या किया कि इंद्र ने अपने वज से सारे पर्वतों का पंख तोड़ना शुरू कर दिया। अब सब कहा कि अब अपना अपना स्थान ग्रहण कर लो, तो सारे पर्वत स्थिर हो गए। लेकिन एक पर्वत ऐसा था वो जो है भागा अपना पंख बचाने के लिए, और समुद्र के नीचे जो है खुज गया। तो हनुमान जी ने कि पिताजी जो थे उन्होंने उनका सहयोग किया, मैनाक पर्वत उसको नीचे दिवा दिया, उसका पंख बचा था। इसीलिए हनुमान जी समुद्र के ऊपर से लंका की ओर उड़ रहे थे, तो मैनाक पर्वत को जो है समुद्र कहा कि आप जाओ। मैनाक पर्वत कहता कि आप कुछ समय के लिए हमारे पर विश्राम कर लीजिए, क्योंकि हमारे पर आपके पिता का बहुत बड़ा कर्ज है, क्योंकि जब इंद्र ने सारे पर्वतों का पंख काटने लगे थे तो आपके पिताजी ने मेरा पंख बचा लिया था। तो मैं चाहता हूँ कि आज आप जो है मैं आपको सेवा कर सकूँ। हनुमान जी का हमारे पास इतना समय नहीं है, हमको जाना है। तो हनुमान टच कर लिया, फिर सम देव पर्वत फिर नीचे चला गया, ऐसा था। तो यही आप सोचिए कि इस वैज्ञानिकों के बहकावे में जो भक्त होते हैं ना वो नहीं आते। वो जानते हैं कि सारा सिस्टम, इस संसार की सृष्टि जो है ये किसके आधार पर टिकी हुई है, भगवान के सिस्टम पर चल रहा है। जय सिद्धार्थ राधिका रमण भगवान की, कृष्ण बलराम भगवान की। इसीलिए आप सब भक्तों से वास्तव में ये जो भगवत गीता है, क्योंकि इसमें गीता जयंती मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान ने गीता का ज्ञान दिया था, ये आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है कि ऐसा दिव्य ज्ञान इस धरती पर भगवान लेके आए कि अगर इस ज्ञान को हम आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। से भगवत गीता हम सबको रोज पढ़ना चाहिए, एक श्लोक तो रोज पढ़ना ही चाहिए। अपने जीवन उसको क्या करना, फॉलो करना ही चाहिए। तो परम भगवान श्री कृष्ण का ये जो दिव्य ज्ञान है पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि इस सारे सृष्टि का जो स्रोत है उसके आधार कौन है, कृष्ण है। हमारे प्रभुपाद जी ने किताब में समझाया है कि वैज्ञानिक अगर बनता है तो उसको बुद्धि कौन देता है, भगवान ही देते हैं। ये इंसान के हाथ नहीं है कि कोई दूसरा वैज्ञानिक पैदा कर दे। अगर ऐसा होता तो प्रभुपाद ने बोला है कि फिर दूसरा न्यूटन क्यों नहीं आज तक पैदा हुआ, क्योंकि भगवान जिसको बुद्धि देते हैं वही वैज्ञानिक बन सकता है। भगवान जिसको सुंदर देता है वो विश्व सुंदर बन सकता है। भगवान जिसको बल देते हैं वो बलवान बन जाएगा, दार्शनिक बन जाएगा। भगवान जिसको ज्यादा धन दे दिया वो क्या बन जाएगा, धनवान। तो ये धन बल ऐश्वर्य सौंदर्य कीर्ति ज्ञान बुद्धि ये देने वाले कौन है, भगवान। जिसको ज्यादा दे दिया वैज्ञानिक बन गया, भगवान बनाते हैं। प्रभुपाद जी ने बड़ा क्लियर किया है कि इंसान के हाथ में कुछ नहीं है, उसके हाथ में एक ही है, कर्मण्येवाधिकारस्तः मां फलेषु कदाचन। कर्म करने पर अधिकार इंसान के हाथ में है, लेकिन फल किसके हाथ में है, भगवान के हाथ में है। और भगवान गीता में ये बहुत अच्छा समझाया है कि जो जैसा कर्म करेगा फल भी उसको उसी प्रकार से मिलेगा। कर्म के आधार पर भगवान बहुत ही चतुर हैं। भगवान का एक गुण है वाक पटु, बात करने में भगवान क्या है, मास्टर। तो बड़े चतुराई से इस श्लोक में समझा दिया कि कर्म करने पर अधिकार तुम्हारा है, फल किसके हाथ में है, मेरे हाथ में है। अब बेटा जैसा तू कर्म करेगा वैसा फल भुगतेगा। अगर अच्छा फल चाहते हो तो अच्छा कर्म करना पड़ेगा, अब बुरा फल चाहते हो तो बुरा कर्म करना है। अर्थात गेंद हमारे पाले में भगवान कर दी है, अब हमें निर्भर करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। भगवान कितने कृपालु हैं कि उन्होंने गीता के माध्यम से क्लियर कर दिया क्या कि कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए। यहां तक बता दिया गया कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है, जो नहीं खाना चाहिए लोग वही खा रहे हैं। अब कहते हैं हम, देखो बड़ी विचित्र स्थिति, इंसान जैसा कहता कि धर्म बिना नर पशु भी समान, धर्म के बिना इंसान क्या है, पशु के ही समान है। और इंसान इतना खतरनाक पशु है, इतना खतरनाक पशु है कि पशु से भी क्या है, बदतर हो गया है। यह आप जान लीजिए, इंसान से अगर इंसान खतरनाक हो जाए उससे ज्यादा जानवर से भी खतरनाक है। यह आप समझिए कि कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे, तो हमें बड़ा सतर्क होना चाहिए। इसीलिए जितने भी किताबें हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, भागवत, गीता, जितने भी संदेश हैं, सिर्फ किसके लिए हैं, मनुष्यों के लिए हैं। ये जानवरों के लिए नहीं लिखे गए हैं, क्योंकि जानवर तो जानवर हैं, उनके बॉडी में जो सिस्टम डाल दिया है वो अपने सिस्टम में चल रहे हैं। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो कोई सिस्टम में नहीं रहता, मनमानी करता है। तो उसके कंट्रोल करने के लिए ये सारे शास्त्र बताते हैं तुम्हें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और जो मना करो वही करता है इंसान, इतना खतरनाक है। सच है कि नहीं सच है? भगवान ने गीता में कह दिया है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि पत्र पुष्प फल और जल जो मुझे अर्पित करता है, हे अर्जुन मैं इसे खाता हूं। भगवान ने कहीं नहीं कहा गीता में अंडम मटनम चिकनम खाने का, लेकिन लोग अंडा मटन कुछ भी खा जाता है, कुत्ते का मांस खराब भी, अभी आप चाइना चले जाए तो वहां कुछ भी खा जाते हैं, सांप बिच्छू गुजर जो भी पाएंगे कच्चा खा जाते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप जानते हैं हमारे गुरु मां बता रहे थे चाइना में मंकी जूस पीते हैं लोग, मंकी का गर्दन काट देते हैं, पाइप डाल देते हैं उसमें पियो, स्नैक्स को फ्राई करते हैं ऐसे, वहां बड़े बड़े ग्लास जार में स्नैक, वैरायटी के स्नैक रहेंगे, आपको जो पसंद है उसको चिमटी से पकड़ लेते हैं, और नीचे जो है तेल खोलता रहता है गर्म, और उसमें डिप कर देते हैं, वो कड़क हो जाता है, और काट के प्लेट में सजा दे देते हैं मिर्ची नमक डाल करके। आप क्या करते हैं? कुछ भी खा जाते हैं। ऐसे से लोग दुनिया कहां जा रही है, इसीलिए हर इंसान क्या है, परेशान है। ये आप जान लीजिए, आपके दिल्ली शहर में भी KFC, मैकडोनाल्ड बड़े बड़े खोल रहे हैं। क्यों खोल रहे हैं? कि इंसान खा रहा है। अगर इंसान खाना बंद कर दे, ये दुकानें, कसाई घर अपने आप क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। क्योंकि इंसान खा रहा है तो खिलाने वाला की क्या जाता है, उसका तो पैसा बन ही रहा है, ये स्थिति है। अब सरकार करे तो क्या करे, इंसान खा रहा है तो लोग खिला रहे हैं। तो इसलिए जो कहते हैं कि कसाई खाने बंद कर देना चाहिए, जागरूकता ऐसी होनी चाहिए इंसान खाना बंद कर दे, इसे हर घर में आपको गीता पहुंचानी चाहिए, और लोगों को पकड़ पकड़ के गीता पढ़ानी चाहिए कि गीता पढ़िए कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए। ये भगवान कहते हैं, भगवान कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, ये समस्या है, ये जान लीजिए, ये सच्चाई है। अभी 17 तारीख को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU में एक हमारी स्पीच है, पिछले साल भी हमने दिया था, वहां पे टाबी देखते कि बस देव कि पूरा विश्व जो है एक परिवार है, तो शांति से लोग क्यों नहीं रह रहे हैं। टॉपिक तो बड़ा अच्छा अच्छा रखते हैं, तो हमने भी यही बात कही थी, इसलिए परेशान है कि कुरान को मानने वाले कुरान की बात नहीं सुन रहे हैं, बाइबल को पढ़ने वाले बाइबल की बात नहीं मान रहे हैं, और गीता जो हिंदू अपने आप कहते हैं वो अपने ग्रंथ की बात नहीं मान रहे हैं। ये सारी समस्या, अब सब अपने आप हिंदू समझते हैं, हम हिंदू हिंदू, तुम खा हिंदू हो, अरे तुम गीता की बात स्वीकार नहीं करते। भगवान कहते हैं सुबह उठना चाहिए, लोग 12 बजे तक उठते हैं, है ना? गीता भगवान कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो क्या है, दैवी गुण वाला होता है, और जो सूर्योदय के बाद उठता है आसुरी गुण वाला होता है। तो जितने सोने वाले लोग हैं ये सब आसुरी गुण वाले ही हैं। इसमें सांस समझते हैं, उठेंगे तो बैठ के चाय लेंगे, फिर कुत्ता लेकर टहलाने जाएंगे। अरे कुत्ता टहलाने से कोई आदमी बड़ा माना जाता है ना, लेकिन सोच ऐसी है, आप क्या कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि ये लोग गीता पढ़ते नहीं, धर्म के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहते, इसलिए हर इंसान क्या है, परेशान है। कहते हैं मैं हिंदू, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। मंदिर है, जितने मंदिर बने हैं उतना तुम कितना जाते हो, कितना फॉलो करते भगवान राम का। भगवान राम तो आदर्श पुरुष है, उन्होंने धरती पर आकर सिखाया। भगवान का आचरण, भगवान ने इस धरती पर आकर के सब सिखाया कि हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए। आप खुद सोचिए कि हर शास्त्र ही कहता है कि इंसान को सच बोलना चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए। आप खुद सोचिए, भगवान राम ने रावण तब को मार दिया, एक शब्द गाली नहीं दिया। आप क्या करते हैं, जरा से गाली टच हुई नहीं, दे दनंदन गाली ग्लोज मार पीट मर्डर तक हो जाता है, जिसको रोड रेस कहते हैं। अपने घर में लोग कुत्ते बिल्ली से ज्यादा खतरनाक लड़ते हैं। आज परिवार में चार लोग हैं, पट नहीं रही, लड़ जाते बात बात पे। क्यों? क्योंकि पेशेंस नहीं है। धार्मिक के खान पान का कोई परहेज नहीं है। ये समस्या है कि जैसा करेंगे खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन। अगर मांसाहार करेंगे, दारू पियेंगे, नशा करेंगे, गलत चीजें खाएंगे तो आपका मन भी वैसे बनेगा, क्योंकि इसका सीधा असर पड़ता है। जैसा करेगा आहार वैसा बनेगा विचार। तो गीता में भगवान शिक्षा देते हैं कि इंसान को जो होना चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तम, इतनी सुंदर चीजें भगवान ने बनाई वो खाओ। कोई जरूरी है कि आप मुर्गा खाओ, मुर्गी खाओ, बकरा खाओ, बकरी खाओ, मछली खाओ? इंसान के लिए ऐसा भोजन नहीं है, शास्त्र कहता है। इसीलिए हर इंसान क्या है, परेशान है। परेशानी की जड़ इंसान खुद है। तो आप सब भक्तों से यही अनुरोध है कि ये जो भगवद गीता है खुद पढ़िए और दूसरों को पढ़ने के लिए दीजिए कि वो भी इसको पढ़ें और अपना जीवन सफल बनाएं। अनेक गरुड़ पुराण आप पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि क्या करने से आपको कैसा दंड यमराज के द्वारा दिया जाता है, उसमें सब लिखा है। इसीलिए जल्दी कोई गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना चाहता, डर लगता है उससे पढ़ने से। जब मर जाता है कोई तब पढ़ते हैं। अरे भैया रोज पढ़ो तब पता चलेगा, तब तुम सुधरोगे। क्योंकि यमराज तो तैयार है डंडा मारने के लिए, दंड देने के लिए। और उन्हें इसीलिए गरुड़ पुराण लिखा गया है कि लोग पढ़ें और इस गुणों को पढ़ करके अपने आचरण को क्या करें, शुद्ध करें। जो गलत काम करने से कितना भयानक दंड मिलता है, पढ़ेंगे तभी तो गलत काम नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, उसको नहीं छुएंगे, गीता भी नहीं छुएंगे। क्योंकि भाई तुम्हें मौज मस्ती लेना है, जो मर्जी खाना है, जो मर्जी पीना है, इसलिए गीता नहीं पढ़ना है। कि गीता भगवान तो ही कहते हैं ना, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना, कब सोना चाहिए, कब जागना चाहिए। एक गीता में तो यही है सर, कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए लोग जो हैं गलत काम करने वाले वो गीता से सत्संग से दूर भागते हैं। क्योंकि जानते हैं सत्संग बैठेंगे तो कहीं ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो, वो मत करो, और सब करना चाहते हैं। ये समस्या है, ये सच्चाई है। अब भगवान सब जानते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन तुम्हारे में हमारे में यही अंतर है कि मैं परमात्मा के रूप में सबके हृदय में अवस्थित हूँ, उसके मन की बात मैं जानता हूँ, लेकिन तुम नहीं जानते। तो भगवान सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। भगवान से कोई चीज छुपी नहीं रहती। आप कितना बार चालाकी करो कि हम कोई देख तो नहीं रहा है, गलत कर जाओ, लेकिन जो देखने वाला है वो तो आपके हृदय में बैठा हुआ है, उससे कोई चीज छुपा नहीं हुआ। आप खुद सोचिए, ये दृश्य उस समय का है जब प्रहलाद महाराज को मारने के लिए उनके पिता खुद आ गए। कि उन्होंने पूरी ताकत लगाती थी अपने बेटे को मरवाने के लिए, कोई मार नहीं पाया। कि राखे कृष्ण मारे के, भगवान कृष्ण जिसको बचाना चाहे कोई मार सकता है? इसलिए प्रहलाद प्रहलाद कोई नहीं मार पाया। तब उनके पिताजी हिरण्यकश्यप खुद मारने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए, कहे कि मैं मारूंगा। तो उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि कहां है तुम्हारा भगवान? अब मैं तुम्हें देखता हूं कैसे तुम्हें बचाता है, कहां है तुम्हारा भगवान? प्रहलाद मां ने कहा, बड़े दिमाग से देखिए, विनम्रता में कितनी ताकत होती है, इससे पूछिए। उन्होंने बड़े कि हे पिताश्री, हमारे जो प्रभु हैं, हम में तुम्हें खड़ खम सब जग व्यापक श्याम, जो हमारे प्रभु हैं हम में तुम्हें खड़ सब जगह व्याप्त है, कहें इस खम्भे में भी हैं कि हाँ इस खम्भे में भी है विश्वास है ना। इसीलिए भगवान खम्भे से ही प्रकट हुए, नहीं चाहते तो ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से पकड़ सकते थे उसको, लेकिन भगवान अपने भक्त का वचन को सत्यापित करने के लिए भगवान कहाँ से आए? खम्भे से आए। तो भगवान सब हृदय में है। भक्त प्रहलाद महाराज क्लियर कर दिया इस बात को कि आपके अंदर भी में भी है। उनका हमें तुम में सब जगह, भगवान गीता में खुद हर जगह मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सब हृदय में अवस्थित हूँ। तो भगवान सब जानते हैं। जब ब्रह्मा जी से वरदान लिया था हिरण्यकश्यप, तो हिरण्यकश्यप के भी तो हृदय में भगवान थे, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान है। तो उसने जैसा वरदान मांगा तो भगवान ने अपनी तस्वीर उसी समय क्लियर कर दी थी। अच्छा तो ऐसा नहीं मरना चाहता, तब हम सारा सिचुएशन भगवान बना लेते। इसे मारने के लिए ऐसे समय का इंतजार करते जो समय का वरदान मांगा था। तब ब्रह्मा ने भगवान ने क्या किया, हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, अपने जंघा बैठा दिया, कहा कि हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी विधाता को जब तुमने वर मांगा था उनके सारे अर्थात सारी फॉर्मेलिटी पूरा करते हुए अब मैं तुम्हें मार रहा हूं, सारी फॉर्मेलिटी पूरा करती और उसको मार रहा हूं। तो इसलिए हम सबको सतर्क रहना चाहिए, गलत काम करने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। आप मत सोचो कोई नहीं देख रहा है, जिसको दंड देना है वो तो देख ही रहा है। तो भगवान से डरो, लोग डर नहीं रहे हैं इसलिए कुकर्म कर रहे हैं। अब जन्म मरने के बाद कुत्ता बिल्ली कॉकरोच बन के पैदा हो रहे हैं, है ना, जानवर बन के पैदा हो रहे हैं, सही बता रहा हूँ, कीड़ा बन जाते हैं। ये सब 84 लाख यूनिया है, जीव इसीलिए भ्रमित कर रहा है। अब लोगों के बोलो कि जो बनेगा, अभी तो हम इंजॉय करने दो स्वामी जी, उसके बाद जो बनना बन जाएगा, माने सुअर बनने के लिए तैयार है, सब कुछ बनने के लिए तैयार है, इसमें मौज मस्ती। क्या ये जीवन इसीलिए मिला हुआ है? ये मनुष्य शरीर इसके लिए नहीं है। मनुष्य शरीर किसके लिए है? भगवान की भक्ति करने के लिए, एक अच्छा जीवन जीने के लिए। तो ये प्रभुपाद जी हाँ बोल पड़े कि जो वैज्ञानिक हैं उनसे अच्छे तुम्हारे क्या हैं? मुर्गी के बच्चे हैं। क्या प्रभुपाद जी, प्रभुपाद बिल्कुल डरते नहीं। तमाम कृष्ण पढ़ने लगे, हमने 10 से भी अधिक मूल तत्वों की सृष्टि की है, जो भगवान भी प्रभुपाद फिट टुका, तुम्हारी सृष्टि की परवाह कौन करता है? तुम्हारी सृष्टि के बिना भी अंडा मौजूद है, है नहीं कहा ना, अंडा मौजूद है। तमाम कृष्ण पद फिर पढ़ने लगे, नहीं वे कहते हैं कि भगवान भी उनकी सृष्टि नहीं कर सकता था, क्योंकि उनकी रचना में जो तकनीकी नीत है उसे भगवान भी नहीं जानता। प्रभुपाल भगवान तुम्हारे मुंह पर लात मारता है, उसे तुम्हारी सृष्टि की रचना की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सृष्टि के बिना ही वो कुछ भी कर सकता है। प्रभुपाद जी बोलते तुम्हारी सृष्टि के बिना कुछ कर सकता है, भगवान तुम्हारे मुंह पर जूतों से मारता है, व्यर्थ के बकवासी उसे इसी तरह बना दो। तमाम कृष्ण कहा, मुझे विश्वास है कि हंसदू ने बताया होगा, आगे हम उसका उत्तर पढ़ेंगे। जो भी हो, वैज्ञानिक अपनी बात कहता जा रहा है, क्या ये दोनों लोग श्रीलंका के वैज्ञानिक डॉक्टर की सफलता से परिचित हैं? प्रभुपाद जी, उसके वैज्ञानिकों की परवाह कौन करता है? प्रभुपाद जी कभी भी वैज्ञानिकों को परवाह किया ही नहीं, क्यों जानते क्यों? आप लोग इतना उत्तर से इसलिए कि ये जो जीवन है जिसको हम हवा कहते सांस लेते हैं, बिना सांस के कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता। ये सांस कौन दे रहा है? भगवान दे रहे हैं। आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं दावा किया कि मैं हवा बना रहा हूं और सबको सप्लाई कर रहा हूं। अगर कोई भगवान की बात नहीं मानता कोई वैज्ञानिक, उसको बैठाओ कि तब तुम्हें हम अपने भगवान की बनाई हवा तुम्हारे नाक में नहीं जाने देंगे, है ना? तुम अपने से कोई अलग से हवा बनाओ, है ना? उसका नाक मुंह बंद कर दो। ये नाक मुंह किसका दिया हुआ है? भगवान का दिया हुआ। हम तुम्हारा नाक मुंह बंद कर देते हैं, अपने ने कोई यार अलग से नाक मुंह बना के दिखाओ, अलग से हवा, मर जाएगा वैज्ञानिक। बिना हवा तो विज्ञान जी नहीं सकता, नाक तो भगवान ने दिया है। अरे जो दांत भगवान ने दे दिया है अगर वो टूट जाता है तो नकली दांत बनवाने के लिए इंसान जाता है, कहता हम वैज्ञानिक है? सोचने वाली बात। भगवान का ऐसी सृष्टि है, ऐसी बॉडी हम सबको दे दिया हुआ है कि इस बॉडी का कोई भी पार्ट का शोरूम भगवान ने किसी को नहीं दिया है कि यहां से हाथ खरीद लेना, यहां से नाक खरीद लेना, किसी को दिया हुआ है? बाकी कोई भी गाड़ी जब कंपनी लॉन्च करती है तो उसके पार्ट शोरूम में आ जाते हैं, है नहीं? कोई भी गाड़ी आप खरीदो उसका सारा पार्ट बन जाए। लेकिन भगवान ने जो आपको गाड़ी शरीर दिया है इसका कोई पार्ट का लाइसेंस किसी को नहीं दिया है, आपको इसी से जीना मरना है। सच ही नहीं सच। लेकिन अब क्या कि प्लास्टिक का पेरस से लकड़ी से नीचे लोग रॉड लगा देते हैं, आप सोचने नकली चीजें। आदमी इंसान अच्छा देखे तो पत्थर की आंख लगा देते हैं, लेकिन भगवान का दिया हुआ चीज अलग ही है, उसका कोई मुकाबला नहीं। अगर किसी की टांग टूट जाए, घुटने टूट जाती है, आदमी असहाय हो जाता है, सोचने में। तो ऐसे भगवान का कृपा नाम जपने के बजाय तुम नाम भगवान से बहस करना चाहते, चैलेंज करना चाहते हो वैज्ञानिक ही। इसलिए प्रभुपाद जी वैज्ञानिकों को बिल्कुल नहीं करते कि वैज्ञानिक है जो खुद भगवान को नहीं मानते और दूसरों को भी क्या करते हैं? गुमराह करते हैं, गलत है। प्रभु तो जूता मानो प्रभु कि उसे वैज्ञानिक को प्रवाह कौन करता है? नोबेल पुरस्कार के विजेता है एमिनो एसिड का संश्लेषण करने के लिए प्रभुपाल बैंक किया, नोबेल पुरस्कार का विजेता है। किसी अन्य धूर्त ने उसे नोबेल पुरस्कार दिया है, वह धूर्त है और अन्य धूर्त ने उसे पुरस्कार दे दिया है। सूरी साक्षी मन एक शराब घर में साक्षी पियक्कड़ है। यदि शराब घर में कोई घटना हो जाती है और शराब घर का स्वामी कुछ साक्षियों को लाता है पर वे सभी शराब पीकर धुतता है तो उसके साक्ष का क्या मूल होगा? जो ही कोई नशे में धुत होता है उसका साक्ष बेकार हो जाता है। तमाल कृष्ण पढ़ते गए, प्रभुपाद लगभग प्रत्येक वाक पर उन्हें टोकते गए कि प्रभुपाद जी वैज्ञानिकों को सुनना नहीं चाहते। भक्तों ने कई सप्ताहों में प्रभुपाद जी को इतना उत्तेजित नहीं देखा था। जब तमाल कृष्ण ने हंसदूत का उत्तर पढ़ा तो प्रभुपाद जी जानकर प्रसन्नता हुई कि उसके शिष्य ने उसके तर्क वही दूरा है। वे बोले यह बहुत प्रबल तर्क दे रहा है, यही प्रचार है। तो आपको भी अच्छा प्रचारक बनना चाहिए। प्रभुपाद जी उसे बहुत पसंद करते। प्रभुपाद जी ने पूरे दुनिया में ऐसे नहीं नचाया, उन्होंने अपने सिद्धांत के द्वारा सबको क्या कर कन्विंस कर दिया। वैज्ञानिकों को तो प्रभुपाद जी हर जगह करा। तो इसीलिए भक्तों को जो है खूब पढ़ना चाहिए और कभी भी सिद्धांत से समझौता नहीं करना चाहिए। ये प्रचार प्रभुपाद जी करते। श्री प्रभुपाद जी के पश्चिम जाने के विषय में दो बातें अनिश्चय पैदा कर रही थी। एक तो संयुक्त राज्य के लिए पासपोर्ट तथा अधिवास कार्ड प्राप्त करने की अपरताओं से संबंधित थी। दूसरी बात स्वयं श्री प्रभुपाद जी के मन की हिचक थी जो ज्योतिषी की रिपोर्टों पर आधारित थी। निस्संदेह उनका स्वास्थ्य प्रधान कारण था, किंतु कभी कभी वे हर बात की अवहेलना करके अपने सेवकों को जैसे भी हो उन्हें लंदन ले जाने के लिए कहने को तैयार से लगते थे। वे अभिराम को कुछ उलझने सुलझाने के लिए पहले ही कलकत्ता भेज चुके थे। उनका अमेरिका अधिवास का ग्रीन कार्ड समातीत हो चुका था और दिल्ली में स्थित अमेरिकी दूतावास चाहता था कि वे फिर साक्षात्कार के लिए आए। इस बीच प्रभुपाद जी का पासपोर्ट और एक अस्थायी अनुमति पत्र तैयार किया जा रहा था। इसमें केवल 4-5 दिन लगने वाले थे। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो प्रभुपाद जी देखने कभी कभी आया करता था, उसने कहा कि उन्हें 1 सप्ताह के करीब प्रतीक्षा कर लेना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी ने पाया कि एक बार बाहर जाने का मन बनाना और न जाना और फिर मन बनाना, यह केवल थकाने वाली प्रक्रिया थी। सबसे नया यह समाचार सुनकर के संयुक्त राज्य दूतावास का आग्रह साक्षात्कार पर था, जिसके लिए उनका जाना शारीरिक कारणों से लगभग असंभव था। प्रभुपाद जी बेचैन उठे। अपने बिस्तर पर घंटों पड़े रहने के बाद उन्होंने अंत में तमाल कृष्ण को बुलाया और कहा, मैं जाना चाहता हूँ, क्या आप मुझे ले जाने की व्यवस्था कर सकते हैं? किसी तरह मुझे ले चलिए, वहाँ मुझे एक अच्छा परिणाम नजर नहीं आता। मेरे मन में बड़ा मनोवैज्ञानिक उत्साह है। आप डरे नहीं, मुझे कोई डर नहीं है। मैं चाहे जहाँ मंदिर में मरूँ या वहाँ वैकुंठ सर्वत्र है, जहाँ कृष्ण है वहीं वैकुंठ। प्रभुपाद जी की पूजा पूरे धरती पर ऐसे नहीं हो रही है कि इन्होंने ऐसा किया तो हम सबको हम क्या कर रहे हैं। देखा जाए तो जो प्रभुपाद जी 70 साल की अवस्था में किया, हम इतनी उम्र में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम थक जाते हैं। प्रभुपाद जी लीला में पढ़े तब पता चलेगा ऐसे उनकी पूजा नहीं हो रही है। भगवान को प्राप्त करना आसान काम नहीं है, उनकी कृपा प्राप्त करना आसान काम नहीं है। उनकी कृपा तब मिलेगी जब आप कृष्ण के लिए, प्रभुपाद जी के लिए अपना जान लगा देंगे। प्रभुपाद जी ने ऐसा किया, तब भगवान जो भगवान गीता में कह दिए हैं कि मेरे शुद्ध भक्त जो इच्छा करता है ये अर्जुन, उससे मैं क्या करता हूँ, पूरा करता हूँ। लेकिन शुद्ध बन करके दिखाओ तो, हमारा तो 16 माला 25 माला जप ही नहीं हो पाता ठीक से, हम क्या शुद्ध भक्ति करेंगे, है ना। मन नहीं लगता, कथा में सुनने मन नहीं लगता लोगों का, आप सच्चाई में बता रहा हूँ, है ना। इधर उधर की बातें करेंगे, घूमेंगे टहलेंगे, प्रसाद समय सबका मन लगता है, लेकिन जब कथा होती जप होता कहाँ लोगों का मन करता, ये सच्चाई है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्ट थे इन सब कि साधना अगर हमारी मजबूत रहेगी, सिद्धांत पर हम मजबूत रहेंगे, अटल के सेवा करेंगे, तभी कुछ आप कर सकते हैं। तो हमारी पूरी भक्ति सिद्धांत साधना और सेवा पर क्या है, टिकी हुई है, जान लीजिए। प्रभुपाद जी देखो हम सबके कल्याण के लिए जाने के लिए तैयार हो गए, अस्वस्थ हैं, फिर भी कहते हैं नहीं मैं जाऊंगा। कि प्रभु जानते थे कि अगर हम नहीं जा पाएंगे तो कैसे हमारे शिष्य की भक्ति का प्रचार कैसे होगा। हमारे लिए, हम सबकी सुरक्षा के लिए प्रभुपाद जी इतना संघर्ष किया। तब आज पूरी धरती पर हम प्रभुपाद जी क्या करते हैं, आरती करते हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन उनकी पूजा तब सार्थक होगी जब हम खुद प्रभुपाद जी जो हमको संदेश दिया है उसको अपना आचरण में क्या करेंगे, अपनाएंगे। देखो चरण और आचरण ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने चरण से चल करके मंदिर तो आ जाते हैं, लेकिन आपका आचरण तब पवित्र होगा जब आप भगवान का दर्शन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे और जो सत्संग में बताया जाता है उसको अपने जीवन में उतार करके अपना आचरण शुद्ध करेंगे, तब जो है आपको भगवान की कृपा मिलेगी। कई चरण तो आपको ला दिए मंदिर तक, लेकिन आचरण कैसे शुद्ध होगा, जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। जब मन पवित्र होता है तभी आचरण भी क्या होता है, शुद्ध होता है। अब मन को पवित्र करने के लिए क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो अपना खूब, आज एकादशी है, सबको 25 माला जप करिए, भगवद गीता पढ़िए, अब पढ़िए भी समझिए भी, जब सामने आ जाए तो अपने जीवन में उतारिए, तब उसका फल मिलेगा। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको उसका फल मिलेगा नहीं। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो आप लोग पुस्तक वितरण में लगे हैं कि नहीं लगे हैं? मुझे बताया गया 2.5 लाख का कोटा है। अच्छा, 2.5 लाख गीता आप लोगों को क्या करना है? वितरित करना है। तो इसके लिए आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा एक गीता लोगों तक पहुंचा सकते हैं, कि इससे ही उसका क्या होगा, उद्धार हो जाएगा। एक महीना खूब गीता बांट करके जिसको गीता दिया है उसका भी लिस्ट जो है बनाना चाहिए कि इतने लोगों को दिया है, वो गीता पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ये भी तो करना पड़ेगा। ये भी जरूरी है कि गीता तभी सार्थक होगी, क्या ना, गीता तभी सार्थक होगी जब लोग उसको पढ़ेंगे। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप खुद गीता बांटे, साल भर जिसको गीता दिया है उसके पीछे पड़ जाए, भक्त बनेगा ही बनेगा। हरे कृष्ण। इसलिए कि अज्ञानता है, आप अपना समय निकाल कर उनको समय दीजिए, है ना, क्योंकि जब तक लोग सत्संग करेंगे आपसे जुड़ेंगे नहीं, कैसे सुधरेंगे? इसलिए भक्ति का पहला सीढ़ी क्या होती है? श्रवणम, है ना, हमें सुनाना चाहिए और उसको सुनना चाहिए, तभी सुनेगा जब सुनाने के पीछे पड़ जाएंगे। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय।